अध्याय 67 प्राचीन व आधुनिक जादू टोना। एंदोर की स्त्री से शाऊल की भेंट का पवित्र शास्त्र में किया गया वर्णन बाइबल के विद्यार्थियों के लिए दुविधा का स्रोत रहा है। कुछ का मानना है कि शाऊल के साथ साक्षात्कार के समय शमूएल वास्तव में उपस्थित था, लेकिन बाइबल स्वयं एक विपरीत निष्कर्ष के लिए पर्याप्त आधार भी देती है। यदि जैसा कि कई दावा करते हैं शमूएल स्वर्ग में था, उसे वहां से परमेश्वर की शक्ति या शैतान की शक्ति के द्वारा बुलाया गया होगा। कोई भी एक क्षण के लिए भी यह विश्वास नहीं करेगा कि एक परित्यक्त स्त्री के मंत्रोच्चार का मान रखने के लिए शैतान के पास परमेश्वर के भविष्यवक्ता को स्वर्ग से बुलाने की शक्ति थी। ना ही हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे उस डायन की गुफा में बुलाया था, क्योंकि प्रभु ने शाऊल के साथ स्वप्न द्वारा, उरीम द्वारा या भविष्यवक्ताओं द्वारा संपर्क करने से मना कर दिया था। पहला शमूएल 28 आयत 6। यह परमेश्वर के व्यक्तिगत रूप से संपर्क के निर्धारित माध्यम थे और वह शैतान के कर्मक के माध्यम से संदेश पहुंचाने के लिए इनकी उपेक्षा नहीं करता। संदेश स्वयं ही उसकी उत्पत्ति का पर्याप्त प्रमाण है। इसका लक्ष्य शाऊल को प्रायश्चित के लिए विवश करना नहीं, वरन उसे विनाश की ओर ले जाना था, और यह कार्य परमेश्वर का नहीं वरन शैतान का था। उसके अतिरिक्त पवित्र शास्त्र कहता है कि अपना भविष्य जानने या सलाह लेने के लिए शाऊल के उस ओझा स्त्री से भेंट करने के कारण ही परमेश्वर ने उसे अस्वीकार किया और नष्ट होने के लिए त्याग दिया। यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने ओझा से पूछकर सम्मति ली थी, उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शाऊल ने सिद्ध प्रेत से पूछा, परमेश्वर से नहीं। पहला इतिहास 10 आयत 13-14। उसने परमेश्वर के भविष्यवक्ता से संपर्क नहीं किया, वरन भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के माध्यम से शैतान ने संपर्क किया। शैतान वास्तविक शमूएल को प्रस्तुत करने में असमर्थ था, लेकिन उसने निश्चय ही एक प्रतिरूप प्रस्तुत किया जिसने उसके छल के लक्ष्य को सार्थक किया। प्राचीन काल के भूत सिद्धि और जादू टोना के सभी प्रकार मृतकों के साथ संपर्क में विश्वास पर आधारित थे। जो प्रेत विद्या की कला का अभ्यास करते थे वे मृतकों की आत्माओं के साथ संपर्क का और उनसे भविष्य का ज्ञान प्राप्त करने का दावा करते थे। मृतकों से सम्मति लेने की परंपरा का वर्णन यशायाह की भविष्यद्वाणी में किया गया है, जब लोग तुमसे कहे, ओझाओं और सिद्ध प्रेतों से जाकर पूछो जो धीमी आवाज में फुसफुसाकर बोलते हैं, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? यशायाह 8 आयत 19। मृतकों के साथ संपर्क में यही विश्वास अधर्मी मूर्ति पूजा के कोने का पत्थर बना। ऐसा विश्वास प्रचलित था कि दिवंगत शूरवीरों की देवत्वारोपित आत्माएं ही मूर्ति पूजकों के देवी देवता थे। इस प्रकार मूर्ति पूजकों का धर्म मृतकों की आराधना थी। यह पवित्र शास्त्र से प्रमाणित है। बेतपोर में इज़राइल के पाप के वर्णन में कहा गया है, इज़राइली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन्हें अपने देवताओं के यज्ञों में आने का निमंत्रण दिया तब इज़राइलियों ने वहां भोजन भी किया और उनके देवताओं को दंडवत किया, और इज़राइली बालपोर देवता की पूजा करने लगे। गिनती 25 आयत 1-3। भजन लिखने वाला हमें चढ़ावे में चढ़ाए हुए बलिदानों से संबंधित देवताओं के बारे में बताता है। वे बालपोर देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। भजन संहिता 10 आयत 28। अर्थात बलि मृतकों के लिए चढ़ाई जाती थी। मृतकों के देवत्वारोपण और मृतकों के साथ तथाकथित संपर्क का देव पूजा अर्थात मूर्ति पूजा की लगभग प्रत्येक प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। माना जाता था कि देवी देवता अपनी इच्छा मनुष्यों को बताते थे और सलाह मांगे जाने पर सलाह भी देते थे। रोम और यूनान के प्रसिद्ध देववाणी करने वालों की यही विशेषता थी। मृतकों के साथ संपर्क में विश्वास आज भी तथाकथित मसीही देशों में भी किया जाता है। अध्यात्मवाद के नाम में दिवंगतों की आत्मा होने का दावा करने वालों के साथ संपर्क करने का अभ्यास व्यापक हो गया है। ये उनकी सहानुभूति को गिरफ्त में लेने के योग्य होता है जिन्होंने अपने प्रियजनों को कब्र में उतारा है। मायामय प्राणी कभी कभी लोगों पर उनके दिवंगत मित्रों के रूप में प्रकट होते हैं और अपने जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन करते हैं और वो कार्य करते हैं जो वो जीवित होने के समय करते थे। इस प्रकार वे मनुष्य को विश्वास दिलाते हैं कि उनके मृत मित्र स्वर्गदूत हैं जो उनके ऊपर मंडरा रहे हैं और उनसे संपर्क कर रहे हैं। इस प्रकार तथाकथित दिवंगतों की आत्माओं को मूर्तियों के समान मान्यता दी जाती है और कई लोगों के लिए उनके कहे शब्दों का परमेश्वर के वचन से अधिक महत्व होता है। लेकिन फिर भी कई हैं जो अध्यात्मवाद को मात्र पाखंड मानते हैं, जिन प्रदर्शनों के आधार पर वो अपने अलौकिक स्वभाव के दावे का समर्थन करता है, उन प्रदर्शनों का कारण माध्यम की ओर से छलावा माना जाता है। ये सच है कि चालबाजी के परिणामों को प्रायः वास्तविक प्रदर्शन के तौर पर टाल दिया जाता है। ये भी सच है कि अलौकिक शक्ति के महत्वपूर्ण प्रमाण रहे हैं और कई जो अध्यात्मवाद को सयानेपन या मानुषिक निपुणता के परिणाम स्वरूप अस्वीकार करते हैं, इसके दावों को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं जब वे उन प्रदर्शनों का सामना करते हैं जिन्हें वो अपनी निपुणता से नहीं समझा पाते। आधुनिक अध्यात्मवाद और प्राचीन अभिचार और मूर्ति पूजा के रूप सब का महत्वपूर्ण सिद्धांत मृतकों के साथ संपर्क है और ये उस झूठ पर आधारित है जिससे शैतान ने हवा को अदन की वाटिका में भरमाया था। तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर स्वयं जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उत्पत्ति 3:4-5। ये झूठ पर आधारित है और उसी को स्थायी बना रहे हैं और वे झूठ के पिता के समान हैं। इब्रियों के लिए किसी भी तरह से मृतकों के साथ पाखंडी संपर्क करना स्पष्ट रूप से निषेध था। परमेश्वर ने ये द्वार प्रभावशाली ढंग से बंद कर दिया जब उसने कहा, मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका कोई और भाग न होगा। सभोपदेशक 9:5-6। भजन संहिता 146:4 में लिखा है, उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। और प्रभु ने इज़राइल से कहा, जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर मुड़कर उनके पीछे चलकर व्यभिचारी बने तो मैं उस प्राण के विरुद्ध होकर उसे उसके लोगों के बीच में नष्ट करूंगा। लेव्यव्यवस्था 20:6। सिद्ध प्रेत मृतकों की आत्माएं नहीं थीं, वरन वे शैतान के संदेशवाहक दुष्ट दूत थे। जैसा कि हमने देखा, प्राचीन मूर्ति पूजा जिसके अंतर्गत मृतकों की पूजा और उनके साथ पाखड़ी संपर्क आते हैं, बाइबल द्वारा प्रेत पूजा घोषित की गई है। प्रेरित पौलुस अपने भाई बंधुओं को उनके अधर्मी पड़ोसियों द्वारा की जा रही मूर्ति पूजा में किसी भी प्रकार से सम्मिलित होने के विरुद्ध चेतावनी में कहता है, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। 1 कुरिन्थियों 10:20। इज़राइल की बात करते हुए भजन लिखने वाला कहता है, उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया और अगले पद में वो समझाता है कि उन्होंने उन्हें कनान की मूर्तियों पर बलि किया। भजन संहिता 106:37-38। मृतक पुरुषों की तथाकथित आराधना में वे यथार्थ में पिशाचों की पूजा कर रहे थे। आधुनिक अध्यात्मवाद इसी नींव पर टिका हुआ प्रेत पूजा और भूत सिद्धि का नए रूप में पुनः प्रचलन है, जिसे आदि से परमेश्वर ने तिरस्कृत और निषिद्ध ठहराया था। पवित्र शास्त्र में ये भविष्यद्वाणी द्वारा घोषित किया गया है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। 1 तिमुथियुस 4 आयत 1। थिस्सलुनीकियों को अपने दूसरे पत्र में पौलुस अध्यात्मवाद में शैतान की विशेष कार्यवाही की ओर संकेत करता है, जो घटना के तौर पर मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले घटित होने वाली थी। मसीह के दूसरे आगमन की बात करते हुए वो दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 आयत 9 में कहता है कि उसका आना शैतान के कार्य के अनुसार संपूर्ण सामर्थ्य और चिन्ह और झूठे आश्चर्य कर्म के साथ है, और अंतिम समय में कलीसिया पर मंडराने वाले खतरों का वर्णन करते हुए वो कहता है कि जिस प्रकार झूठे भविष्यद्वक्ता थे जो इज़राइल को पाप में ले गए, उसी प्रकार झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छुप छुप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। दूसरा पत्रस 2 आयत 1-2। यहां प्रेरित ने अध्यात्म विद्या के शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता की ओर संकेत किया है। वे मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार करते हैं। ऐसे शिक्षकों के बारे में यहुन्ना, जिससे यीशु प्रेम करता था, कहता है, झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। पहला यूहन्ना 2 आयत 22-23। मसीह को अस्वीकार कर अध्यात्मवाद पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है, और बाइबल इसे मसीह विरोधी का रूप बताती है। एंदोर की स्त्री के द्वारा की गई शाऊल के विनाश की भविष्यद्वाणी के माध्यम से शैतान इज़राइल के लोगों को भरमाने के लिए योजनाबद्ध था। उसे आशा थी कि उन्हें ओझा में विश्वास करने की प्रेरणा मिलेगी और वे भी उससे सम्मति लेने जाएंगे। इस प्रकार वे परमेश्वर को अपना परामर्शदाता न मानकर उससे मुंह मोड़कर स्वयं को शैतान के मार्गदर्शन में सौंप देंगे। वो लालच जिसके द्वारा अध्यात्मवाद जनसाधारण को आकर्षित करता है, वो उसकी वो शक्ति है जो भविष्य से पर्दा उठाकर मनुष्य पर वो प्रकट करती है जिसे परमेश्वर ने छुपाया है। परमेश्वर ने हमारे सम्मुख अपने वचन में भविष्य की महान घटनाओं को खोला है, वो सब जो हमारी जानकारी में होना आवश्यक है, और उसने संकट के समय के लिए हमारे पैरों के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक दिया है। लेकिन शैतान का उद्देश्य है परमेश्वर में मनुष्य के विश्वास को नष्ट करना, उन्हें अपने जीवन की दशा से असंतुष्ट बनाना, उन्हें उस ज्ञान को खोजने को प्रेरित करना जिसे परमेश्वर ने अपनी समझ से उनसे छुपा कर रखा है, और उनसे उसका तिरस्कार करवाना जो परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में प्रकाशित किया है। घटनाक्रम का निर्धारित परिणाम न जान पाने पर कई लोग व्याकुल हो जाते हैं। वे अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाते हैं, और अपनी अधीरता में वे एक कर परमेश्वर के उद्धार को देखने से इनकार कर देते हैं। ग्रहित बुराइयां उन्हें लगभग विचलित कर देती हैं। वे अपनी विद्रोही भावनाओं के प्रभाव में आ जाते हैं और आवेशपूर्ण व्यथा में इधर उधर भागकर उसे जानने की कोशिश करते हैं जो अभी प्रकट नहीं किया गया है। यदि वे परमेश्वर में विश्वास रख प्रार्थना में जागरूक रहें, उन्हें ईश्वरीय ढाढ़स मिलेगा। परमेश्वर के संपर्क में आने से उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। बोझ से दबे हुओं और थके हुओं को यीशु के पास जाने से विश्राम मिलेगा। लेकिन जब वे उन साधनों की उपेक्षा करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने उनकी सुविधा के लिए ठहराए हैं, और परमेश्वर द्वारा गुप्त रखी गई बातों को जानने की आशा में अन्य स्रोतों के पास जाते हैं, वे शाऊल वाली गलती करते हैं और केवल बुराई का ज्ञान प्राप्त करते हैं। परमेश्वर इस कार्य प्रणाली से प्रसन्न नहीं होता, और उसने ये स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। भविष्य पर से पर्दा हटाने का धैर्यहीन उतावलापन परमेश्वर में हमारे विश्वास की कमी को दर्शाता है और मन को शैतान के सुझावों के लिए खुला छोड़ देता है। शैतान मनुष्यों को सुझावों के लिए सिद्ध प्रेतों के धारकों के पास ले जाता है, और बीते समय की गुप्त बातें बताकर वो भविष्यवाणी करने की उसकी शक्ति में विश्वास को प्रेरित करता है। दीर्घकाल के दौरान प्राप्त किए हुए अनुभव के द्वारा वो ध्येय से निष्कर्ष निकालकर मनुष्य के जीवन की भविष्यकालीन घटनाओं को अत्यंत सूक्ष्मता से प्रभावित कर सकता है और उनकी भविष्यवाणी कर सकता है। इस प्रकार वो असहाय पथभ्रष्ट प्राणियों को धोखा देकर अपनी शक्ति के अधीन करके और अपनी इच्छानुसार बंदी बना सकता है। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के माध्यम से हमें चेतावनी दी है, जब लोग तुमसे कहें, ओझाओं और जादू टोना करने वालों के पास जाकर पूछो जो धीमी आवाज में फसफसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चेतौनी की ही चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय ही उनमें प्रकाश नहीं है। यशाया 8 आयत 19-20। क्या वे जिनके पास सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता में अनंत पवित्र परमेश्वर होता है, जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, जिनका ज्ञान हमारे प्रभु के शत्रु के साथ घनिष्ठ संबंध से आता है? परमेश्वर स्वयं अपने लोगों का प्रकाश है। वो उन्हें विश्वास के द्वारा अपनी आंखों को उन उत्तम वस्तुओं पर केंद्रित करने को कहता है जो मनुष्य की दृष्टि से छिपी है। धर्म का सूर्य उनके हृदयों में अपनी उज्ज्वल किरणें भेजता है और उनमें प्रकाश के स्रोत को छोड़ शैतान के दूतों की ओर मुड़ने की कोई इच्छा नहीं रहती। शाऊल के लिए दुष्टात्मा का सन, पाप की निंदा और प्रतिशोध की भविष्यवाणी तो था, लेकिन वो उसने सुधार लाने के लिए नहीं वरन उसे निराशा और विनाश की ओर ले जाने के लिए था। चापलूसी के द्वारा मनुष्य को विनाश की ओर आकर्षित करना प्रलोभनकर्ता के उद्देश्य के लिए सबसे लाभदायक होता है। प्राचीन काल में पैशाचिक देवताओं की शिक्षा ने सबसे घिनौने दुराचार को प्रोत्साहित किया। वे ईश्वरीय सिद्धांत जो पाप का तिरस्कार करते थे और धार्मिकता को महत्व देते थे, उन्हें परे रख दिया गया। सत्य को हल्के में लिया जाने लगा। अशुद्धता की न केवल अनुमति दी गई वरन उसकी आज्ञा दे दी गई। अध्यात्मवाद के अनुसार ना तो मृत्यु है, ना पाप, ना दंडाज्ञा और ना ही प्रतिशोध, और यह कि मनुष्य अपतित उपदेवता है, अभिलाषा सबसे श्रेष्ठ नियम है और मनुष्य स्वयं के प्रति उत्तरदायी है। श्रद्धा, शुद्धता और सत्य को सुरक्षा प्रदान करने वाले परमेश्वर द्वारा निर्मित अवरोधी को तोड़ दिया गया है, जिसके कारण कई लोग पाप में दुस्साहसी हो गए हैं। क्या ऐसी शिक्षा एक ऐसे सूत्र का सुझाव नहीं देती जो पिशाचों की आराधना की शिक्षा के समान है? परमेश्वर ने इज़राइल के सम्मुख कनानियों की अपवित्रता में दुष्टात्माओं के साथ संपर्क करने के परिणामों को प्रस्तुत किया। उनमें स्वाभाविक प्रेम का अभाव था। वे मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, हत्यारे और प्रत्येक भ्रष्ट विचार और घृणित प्रथा के कारण घृणित थे। मनुष्य अपने हृदयों को नहीं जानते, क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और खतरनाक रूप से दुष्ट है। यिर्मयाह 17 आयत 9। लेकिन परमेश्वर मनुष्य के दुष्ट स्वभाव की प्रवृत्ति को समझता है। उस समय, जैसे कि अभी, शैतान विद्रोह के अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने की प्रतीक्षा में था, ताकि इज़राइल के लोग स्वयं को परमेश्वर के लिए कनानियों की भांति घृणास्पद बना ले। मनुष्य का शत्रु हमारे अंदर पाप के अनियंत्रित प्रवाह के लिए मार्ग को खोलने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि वो हमारा विनाश चाहता है और हमें परमेश्वर के सम्मुख तिरस्कृत हुआ देखना चाहता है।
शैतान कनान प्रदेश पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहता था, और जब कनान को इज़राइलियों का निवास स्थान बना दिया गया और परमेश्वर की व्यवस्था प्रदेश की व्यवस्था बना दी गई, वो इज़राइल से एक निर्मम और विद्वेषपूर्ण घृणा के साथ बैर रखने लगा। दुष्टात्माओं के माध्यम से पराये देवताओं का परिचय कराया गया और आज्ञा उल्लंघन के कारण चुने हुए लोग अंततः प्रतिज्ञा के देश से तितर बितर हो गए। यही इतिहास शैतान हमारे दिनों में भी दोहराना चाह रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को संसार की घृणित चीजों से बाहर ला रहा है, जिससे कि वे उसकी व्यवस्था का पालन करें, और इस कारण हमारे भाई के आरोपी का कोध सीमा पार कर चुका है और वो बड़े कोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। प्रकाशित वाक्य 12 आयत 10-12। प्रतिज्ञा के देश का प्रतिरूप हमारे सामने है और शैतान का दृढ़ संकल्प है कि वो परमेश्वर के लोगों को नष्ट कर और उन्हें उनकी धरोहर से अलग कर दें। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
मरकुस 14 आयत 38। इस उपदेश की आवश्यकता आज से अधिक पहले कभी न थी। प्राचीन इसराइल के लिए परमेश्वर का संदेश आज के युग के लोगों को भी संबोधित करता है। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। लेव्य व्यवस्था 19 आयत 31, व्यवस्था विवरण 18 आयत 12।